الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم ابھی آپ نے تلاوت جو ہے سماعت فرمائی، یہ پورا ایک رکوع ہے، غالباً چوتھا رکوع، پانچواں رکوع، پانچواں رکوع ہے، 61 سے لے کر اور 68 تک یہ آیات ہیں، 8 آیات ہیں، اور ایک پورا ڈسکورس ہے، یہ ایک پورے کا پورا مضمون ہے اور پورا رکوع ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رکوعوں کی تقسیم کیسے جو ہے موضوع آپ کے اعتبار سے تقریباً بہت اچھی کی گئی ہے، اور اس میں ایک پورا موضوع جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ موضوع آپ کے تلاوت سے دیکھ لیا ہوگا. یہ موضوع ہے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم جو سمود تھی، ان کے بارے میں ان کا ذکر ہے. اور انشاءاللہ ہم آج پچھلا جو تھا وہ، اس سے پہلے ہم نے قوم عاد کے بارے میں پڑھا تھا، اب جو ہے آج جو ہے صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ، وَإِلَىٰ إِلَىٰ کی طرف، ثَمُودَ سمود کی طرف، اَخَاهُمْ جو ہے اخا، وہی لفظ ہے جو پہلے جو ہے آد کی طرف کیا گیا، قوم کی طرف جو ہے کہا گیا تھا اخا، وہاں بھی یہ لفظ ہے، ان کے بھائی ہود کا ذکر آیا تھا، یہاں پہ اخاہم صالح، ان کے بھائی صالح کو جو ہے وہ بھیجا گیا، جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ارسلا. یعنی یہ بات جو پہلی بات حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ارسلا نوح، تو جو نوح علیہ السلام کو جب بھیجا تو وہی بات چلی آ رہی ہے کہ ان کی طرف بھیجا، اور وہ لفظ جو ہے بھیجنے کے لیے جو لفظ ارسلہ وہ محذوف کر دیا گیا، وہ ختم، مطلب وہ اومٹ کر دیا گیا ہے، تو ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے یا اختصار سے لیے یا خوبصورتی کے لیے، کہ آپ کو پتا ہے کہ اختصار جو ہوتا ہے عبارت کی خوبصورتی ہوتی ہے، بریویٹی از سو لو اٹ. تو یہ وہاں بھی اسی طریقے سے، یعنی یہ نون ہے بات کی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تو صالح کو سمود کی طرف، تو کیا سمود کی طرف کیا کیا، تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے. یعنی یہ جو ہے اس سے مراد ہے، کیا ہم بھیج چکے ہیں، ہم نے بھیجا ہے، یہ پرنتھسس اسی لیے ہے کہ اس کے لیے لفظ تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ ریفر اسی طرف کر رہا ہے کہ ہم بھیج چکے ہیں. قالا، اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اے عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. یعنی وہی بالکل الفاظ ہیں جو اس سے پہلے شروع کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا اپنی قوم کے لیے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے، پھر حضرت حود علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ، اور پھر اب حضرت صالح علیہ السلام کی زبان سے بھی یہ الفاظ، تمام انبیاء علیہ السلام یہ الفاظ. مالکم من الہ غیر، مالکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی بھی الہ، غیرہ اس کے علاوہ، ادر دین، یہ غیر جو ہوتا ہے ادر دین کے معنی کے اندر آتا ہے، اس کے علاوہ، جیسے مسلم ہوتا ہے پھر غیر مسلم، مسلمان اور غیر مسلم، جو ادر دین مسلم ہے وہ غیر مسلم، اس لیے غیرہ اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. ہوا انشاکم، ہوا اس نے، انشا ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں مسلسل، اس کو پیدا کرنا، کم تم کو، اس نے تم کو پیدا کیا، انشا یونشی انشا ان، پیدا کرنے کے لیے آتا ہے لفظ، اور اسی سے جو ہے وہ منشی صحاب قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ بادلوں کا پیدا کرنے والا ہے، اٹھانے والا ہے. من الارض، زمین سے اس نے تم کو پیدا کیا، ظاہر زمین کے اجزاء سے پیدا کیا پہلے، آگے پھر میں وستا مرا اور اس نے پھر تمہیں بسایا. اچھا، یہ بالکل لفظ جو ہے، یہ بعض اوقات لفظ مشکل نظر آتے ہیں، لیکن اردو کے کنیکشن کے حوالے سے پھر ہمیں مشکل نہیں ہوتے، تھوڑا سا اگر میں غور کریں. وستا مرا جو ہے، یہ واو تو اور کے معنوں کے اندر ہے، آگے لفظ ہے استا مرا، تو یہ استف علا جو باب ہوتا ہے، دسویں جو فارم ہوتی ہے باب کی، اس کے وزن پہ ہے. اصل میں اس کے جو الفاظ ہوئے پھر، جو اصل الفاظ ہیں، جو اصل مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، وہ تو پھر عین میم را ہوا، امرا، تو اس سے باب استفال جو ہے استعمرا، الف سین تا، تو اس کے ساتھ پہلے ہی پھر لگ، جیسے استفالا فالا کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو پھر جو ہے عمرا ہمارا جو ہوتا ہے رہنا ہوتا ہے، پھر استعمارا جو ہے وہ کسی جگہ پہ لا بسانا، جو عین میم را کا مادہ ہوا استعمارا، یستعمرو استعمارن، آباد کرنا، بسانا، یہ جو استعمار لفظ ہوتا ہے، استعماریت، کالونیلزم، وہ بھی دیکھو کالونی جو ہے اسی چیز کو کہتے ہیں، بسانے کو. کوئی جہاں پہ کالونی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی بھی اسپیسیز، ہیومن اسپیسیز یا دوسری اسپیسیز یا بالکل سب مائکروسکوپ اسپیسیز جو ہوتی ہیں، بیکٹیریا وغیرہ، وہ بھی جہاں پہ رہتی ہیں اکٹھی، تو اس کو بھی جو ہے کالونی کہا جاتا ہے. تو یہ وہی ہے کالونیلزم، استعمار جو لفظ ہے، دیکھیں مشکل لفظ ہے استعمار عربی کے اندر، لیکن اردو میں ایز اٹ از استعمار جو ہے استعمال ہوتا ہے، وہی باب استفال سے ہی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا اصل جو ہے امارا، لا بسانا. اردو میں پھر اسے بہت سارے لفظ، عمر، عمارت جہاں پہ بسا جاتا ہے، معمور جہاں پہ کوئی چیز پل ہے، جہاں پہ کسی چیز سے جو ہے بہت ہی وہ ہے، مطلب سم تھنگ از دیئر لیونگ اینڈ از فل آف، اور معمار جو بنانے والا ہے، استعمار جیسے میں نے کہا کالونیلزم، تعمیر، بنانا، اٹھانا، یہ سارے الفاظ جو ہے اسی سے نکلے ہوئی اردو کے اندر اس طرح. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو اس میں اسی لفظ سے نکلے ہوئی ہیں. اور اس نے تمہیں بسایا فی ہا، اس کے اندر فی ہا کس کی طرف ریفر کر رہے ہیں؟ زمین کی طرف، ارض. فاستغفروا، فاس استغفروا، اللہ سے استغفار چاہو، اس کی طرف اس سے مغفرت مانگو، استغفار چاہو. یہ استغفرا، یستغفرو، استغفارن، کوئی یہ بھی باب استفال کا لفظ ہے. تم پھر توبو، اس کی طرف پلٹ آؤ، الی، اسی کی طرف. دیکھیے یہاں پہ پھر پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا تب بھی انہوں نے فاستغفرو متوبو کا لفظ استعمال کیا. یہاں بھی استغفار اور توبہ کا لفظ آیا ہے، وہاں بھی آیا تھا، یہاں بھی آیا ہے. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے، سب نے کہا، سب انبیاء علیہ السلام نے کہا. یعنی یہ استغفار اور توبہ وہ چیز ہے جو قوموں کی فلاح کے لیے، جس سے قومیں فلاح پا سکتی ہیں. ان ربی، انہوں نے کہا ان، بے شک ربی، میرا رب، قریبن، بہت جو ہے وہ قریب ہے، مجیبن، اور یعنی اور تو اصل میں اور کے لیے تو کوئی لفظ نہیں ہے، اور لانا بھی نہیں چاہیے یہاں، اصل میں اور کے بغیر ہی ترجمہ کرنا چاہیے یہاں پہ. آپ حیران ہوں گے کہ اور کے بغیر کیوں ترجمہ کرنا، یعنی اگر رواں اردو میں کیا جائے تو یہ ایسے ہی ترجمہ ہوگا، بے شک میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا، مجیب، دعاؤں کا سننے والا ہے، مجیب الدعوات، دعوات کا سننے والا ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے. تو مجیب جو ہے، تو اسے پھر جو ہے یہ فکرہ بالکل جو ہے صحیح بنتا ہے. لیکن جو ہے ایک یہاں پہ ایک آپ کہہ لیں کہ تکنیکی اعتبار سے، ٹیکنیکل ایک جو ہے وجہ ہے جس کی وجہ سے اور نہیں استعمال کرنا چاہیے، اگرچہ میں نے بھی جو ہے اور لکھا ہے، لیکن اس کو جو ہے ظاہر ہے بہتر یہی ہے میں اس کو درست بھی کر دوں گا، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو ہے، وہ ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت کا، یعنی مسلمانوں کا، مسلمانوں کی مین سٹریم کا، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اللہ تعالیٰ میں بجک وقت موجود ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک صفت ہوتی ہوئی دوسری صفت جو ہے اسے ٹکراتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر قریب ہے اور پھر وہ مجیب ہے، ایسا نہیں ہے. اور لیکن یہ جو واو آتا ہے یا اور آتا ہے، لفظ اینڈ آتا ہے اس کے لیے انگلش کے اندر جو ایکویلنٹ ہے، تو یہ لفظ جو ہے مغائرت کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. مغائرت کا مطلب ہے غیر ہونا، یعنی ایک چیز ایک ہے اور دوسری اور ہے، تو یہ دونوں کے درمیان میں مغائرت آ گئی، یہ غیر، ایک چیز ہے دوسری اور چیز ہے. تو اس وجہ سے جو ہے مغائرت یا غیر جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے درمیان میں جو ہے وہ، یعنی ایسے ہی ترجمہ کرنا چاہیے جہاں پہ جن صفات کے درمیان میں واو نہیں ہے. اب دیکھیں کہ جہاں پہ بہت ساری سورہ حشر کے اندر جہاں پہ جو ہے بہت ساری صفات کے جو ذکر آیا ہے، تو کسی کے اندر بھی واو نہیں ہے. 8-9 صفات اللہ تعالیٰ کی ایک ہی آیات کے اندر جو بیان کی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے اسی طرح ہے کہ وہ یہ ہے اور وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، اس کے بغیر ہی ترجمہ کرنا، یہ ایک ٹیکنیکل جو ہے وجہ ہے. ترجمہ پڑ گیا،
اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے.
اب جو ہے یہ اگرچہ آپ کو یاد ہوگا ज्यादा लंबा अरसा नहीं गुजरा, हमने सूरह आराफ पढ़ी थी, सूरह आराफ के वस्त के बाद तकरीबन जो है 70 आयात के बाद जो है हजरत साले अलैहिस्सलाम का और आपकी कौम का समूद का जिक्र वहां भी पढ़ आए थे हम, और कमोबेश उतना ही जिक्र यहाँ पे दोबारा जो है वो आया है। तो ये भी वही बात है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये तसलसल है, हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी जब वो तबाह हुई तो उसके बाद जो है जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ जो साथी बचे ये कौमें आद थी, आपको पता है। तो उनके जो साथी थे वो जिस जगह पे अजाब आया जाहिर है उस जगह पे अल्लाह ताला ने उनको इससे पहले निकल जाने का जो हुक्म दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब इस बस्ती को बाद जो है बर्बाद किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। तो वो फिर जो उनके साथी थे वो जो है वो जनूबी इलाके में हिजरत कर गए, यानी जनूबी इलाके में रहते थे वो पहले, और जनूबी इलाके से फिर वो जो शुमाल मगरबी कोने में दूसरी जगह पे काफी दूर जाके जो है आबाद हो गए। तो ये इलाका हजर के इलाका कहलाता है, हजर के इलाका, और इसी के नाम से भी जो है हिजर, सूरह हिजर में भी इनका जिक्र आया है, हिजर उसका नाम भी उसी वजह से, यानी उसी रेफरेंस से सूरत का नाम भी है। तो ये रास्ता जो था ये अगर मदीना से जब जो काफले जाते थे जो ट्रेड कारवान थे जो जाते थे मदीना से शाम की तरफ, तो रास्ते में जो है ये जगह जो आती थी, और इस जो इसी कौम से ये जो जो रेमिनेंट्स थे जो आद के, हूद अलैहिस्सलाम भी तो उसी फिर कौम में से थे, तो उनकी जो रेमिनेंट्स थे ईमान वाले थे। अब जाहिर है ये वो ईमान वालों से एक नई जो कौम नई जो तैयार हुई जो वहां पे इस इलाके में बसी उसको जो है समूद का नाम दिया गया, और कुछ लोगों ने उसको आदे सानी भी कहा है, और इस लिहाज से आदे सानी कहा नेचुरली कि वो सेकेंड आद थे, यानी आद पहले वाले तो जो थे वो अनबिलीवर थे और वो जो है तबाह बर्बाद हो गए, और दूसरे जो आद थे वो फिर ईमान वाले थे और वो आदे सानी कहलाए, या उनको कुरान मजीद ने और तारीख में अरब में उनको समूद के नाम से भी जो है जाना जाता है। अच्छा, ये भी वही जाहिर है, ये भी वही अकवाम थी जो जो आद थे, यानी अरब बायदा थे, कदीम अरबों में इनका शुमार होता था, वो अरब बायदा जो मादूम हो गए, मादूम मतलब है कि वो फैरिश और वो तबाह बर्बाद हो गए, उनसे अल्लाह ताला का अजाब आया। तो आद के बाद अरब की जो कदीम अकवाम में से समूद ने फिर बड़ी तमदनी और तहजीबी और तामीरी जो है तरक्की की, बड़ी शोहरत हासिल की इन्होंने, और जाहिर आपको पता है कि ये भी उन्हीं का तसलसल था पिछली कौम का, तो इनके अंदर भी वो सारी चीजें मौजूद थी, वो टेक्नोलॉजी, वो लहीम शहीम जिस तरीके से थे, वो जो है वो चीजों को डेवलप करने के जो भी उनके अंदर खासा था, तो इन्होंने भी फिर जो है अपनी जब कौम की दोबारा तामीर की तो फिर इन्होंने भी जो है वही तरक्की और शोहरत हासिल की। इनका जमाना तकरीबन जो है वो 2500 कबल मसीह का है, आज से तकरीबन करीबन लिटल मोर देन 4,500 ईयर्स एगो, और आपको पता है कि जो आर थे वो तकरीबन 3500 कबल मसीह में जो है वो गुजरे थे। अच्छा, ये जो वाकई थे ये समूद के, ये अरब इलाकों के अंदर, अरब पेनिनसुला के अंदर, जजीरतुल अरब में, ये पहले अरब के अंदर बड़े खास जबान खास आम थे, और इन इलाकों से भी निकल के फिर इनका जो मामला था जो है समूद का, तो यूनान में भी और रूम के कदीम वारखीन जुग्राफी नफीस और शुरा ने भी अपनी शायरी के अंदर इनका जो है तस्करा किया था, और मौजूदा जमाने में आजकल जो मदीना और तबू के दरम्यान में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसे मदायन साले कहते हैं, यही समूद का सदर मकाम था, और यही वही रास्ता है जब आप जो है मदीना से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हैं, तबूक की तरफ जाते हैं, तो उस रास्ते के अंदर मदायन साले आता है, और आजकल तो ये जो है एक रिजोर्ट के तौर पर और जो है ये आसार कदीमा के मकाम के तौर पर आप इसको विजिट भी कर सकते हैं। तो उस जमाने में ये इलाका हिजर कहलाता था, अब वहां पे जो है वो उस वक्त यानी बड़ी बड़ी इमारतें थी इसके अंदर, और ये इमारतें समूद ने पहाड़ों को तराश तराश के जो है वो बनाया था इनको, और इनकी बड़ी आबादी थी, बड़े शहर थे, और एक मौलाना मौदूदी रहमुल्ला ने तो लिखा है कि ये इतना बड़ा शहर था उसकी आबादी 4-5 लाख से जो है वो कम न होगी, यानी आज से 2500 कबल मसीह 4,500 बरस कबल, 5 लाख आबादी का शहर देख अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा होगा, और 5 लाख आबादी के शहर के लिए जो जरूरियात और दूसरी चीजें होती हैं तो वो भी कितनी होंगी। तो जो है ये भी जैसे मैंने कहा जिस्मानी लिहाज से तो वैसे ही ये आयकों में आपका तसलसल था, और ये चट्टानों को तराश के और इमारतें बनाने में, ऊंची इमारतें बनाने में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर काफी बहुत जो है वो आगे थे, खेती बाड़ी के हुनर से वाकिफ थे, तो उन्होंने नए इलाके में आबाद होकर खूब मेहनत की और ये इलाके बहुत ही जल्द जो है लहलहाते खेतों के अंदर और सब 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 बागात के अंदर जो है बदल गए और ये पूरा इलाका जड़ बड़ा खुशहाल हो गया, गोया खुशहाली लोगों के अंदर जो है वो मौजूद थी। अब ये जो थी बात, इनके अंदर भी स्लोली जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब इनके अंदर के हम सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कौम है जाहिर अरबों के अंदर और इर्द गिर्द के इलाकों के अंदर, ये टेक्नोलॉजी 4,500 बरस कबल शानदार किस्म की टेक्नोलॉजी और जो है सनत व हरफत के अंदर और ज़राअत के अंदर और हर शोबे के अंदर इतनी तरक्की जो है, ये हो नहीं सकता कि किसी कौम के अंदर इतने फिर खवास हों और वो कौम फिर जो है तकब्बुर और जो है खुद पसंदी और नखवत जो है उसके अंदर ना बने। तो इनके अंदर भी इसी तरह ये चीज़ आ गई, दौलत की फरावानी जो है उसके पीछे ये लोग भी पड़ गए और अपनी ख्वाहिशात का असीर हो गए इसके लिए भी, और जाहिर है ये चीजों के साथ साथ जो खुशहाली के साथ तो जो तमाम खराबियां आती हैं तो इनके अंदर भी आ गई, वो पैदा हो जाती हैं, इनके अंदर लोगों को पैदा होगी, और इन्हीं के दरम्यान में फिर जब खराबियां पैदा हुई तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस कौम के अंदर भेजा। आपकी दावत भी वही दावत थी जो इससे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौमों को दे चुके थे, और उस दावत का खुलासा यही था कि आपने सबसे पहले एक इला एक वाहिद माबूद की तरफ जो है वो दावत दी। इस वजह से इंसान का सबसे बुनियादी बिगाड़ और सबसे बड़ा बिगाड़ जो है वो यही है कि अल्लाह ताला इंसान अपने खालिक को और मालिक को छोड़ देता है और उसकी मखलूक में से कई दूसरे जो है अपने जो है वो माबूद बना लेता है जिनके आगे वो सजदा रेज होता फिरता है। आपने भी अपनी कौम को बताया कि तुम्हारा इला और हकीकी हाकिम वही है जिसने तुम्हें पैदा किया है और उसने तुम्हें जमीन के जौहर से पैदा किया है, जमीन के इंग्रेडिएंट से पैदा किया है, और फिर उसने आगे नस्ल इंसानी का एक तरीका जो है वो जारी कर दिया कि जिस तरीके से तुम जो है मादे तौलीद से फिर तुम्हारी जो है ना आगे तुम्हारी बका होगी और इसी से तुम्हारी आगे जो है वो नस्ल चलेगी, और फिर फरमाया कि फिर उसने तुम्हें इसी जमीन के अंदर आबाद फरमाया। यानी आबाद फरमाया क्या मतलब कि उसने इंसानी जिंदगी की तमाम जरूरियात को इसी जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर जो है वो रख दिया ताकि जो है तुम्हारी नस्ल इंसानी से आगे बढ़ सके। इंसान के लिए जितनी जरूरियात हो सकती थी, कभी कोई 10,000 20,000 साल के अंदर भी एक चीज की अगर कभी इंसान को जरूरत पड़ेगी इस चीज की, तो वो यहाँ पे इस अल्लाह ताला ने जो है वो रख दी। उसने जमीन में कुव्वत रोईदगी रख दी है ताकि इंसान अपनी अजनास को उगा के अपनी जरूरतें पूरी कर सके, पानी के जखीरे को आम कर दिया और हर तरफ रख दिया और हर जगह पे रख दिया ताकि इंसान के इस्तेमाल में आए। उसने हवा का कुर्रा बना दिया और बिल्कुल जो है वो फ्री में दे दिया, इंसान को इसकी जरूरत हर वक्त जो है 24 घंटों में से हर वक्त जो है इसकी जरूरत रहती है और हर वक्त इंसान को दस्तयाब हो। तो इसी हिसाब से जिस कदर जरूरत थी जमीन के, हवा हर वक्त जरूरत है तो हर वक्त मुयस्सर है, पानी जो है थोड़े से और कुछ कुछ वक्त के बाद दरकार है, तो जाहिर है उसकी भी फिर जो है अड़ोस पड़ोस आस पास जो है वो और आसमानों से और जमीन में और जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे फिर रख दिया। उसने एक मुनासिब फासले पर सूरज रखा ताकि इस जिंदगी के लिए जिस हरारत और रोशनी की जरूरत है वो जो है वो मिलती रहे ताकि जिंदगी जो है वो नमू पाती रहे इसके ऊपर। चांद हवा आग हर चीज को इंसान की खिदमत के लिए जो है लगा दिया, और फिर उसने इंसान की तहजीबी और तमदनी जरूरतों के लिए उसने इंसान के अंदर सलाहियतें पैदा कर दी, उनको बुरुएकार लाकर वो तहजीब और तमदन को आगे बढ़ाए। उनको अल्लाह ताला ने उसको हरफो सनत जो है वो सिखाई और जेन दिया कि तुम जो है ये कपास उगाओ और इससे जो है ये रेशे निकालो और इनसे फिर कपड़े बनाओ, और फिर उसको सनत व हरफत की और ज़राअत की और दूसरी चीजों की टूल बनाने की और फिर उन टूल्स को इस्तेमाल करने की, और आगे जो है ये जो इरतकाई जो अमल है इंसान का आगे बढ़ने का तहजीब और तमदन का, उसको अल्लाह ताला ने इसके अंदर रख दिया। तो ये उसको मतलब इस्तामरा जो है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जो है ना इसके अंदर जमीन के अंदर रख दिया है और जमीन में तुम्हारे लिए चीजें रख दी है। इस कुरान पर इंसानी जिंदगी के लिए नाकाबिले अहाता مجسر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی اور بندوبست کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی علم کی وسعت اور اس کی صفت تخلیق, یعنی کتنی چیزیں اس نے تخلیق کی ہیں, کس طریقے سے کی ہیں, کس حساب سے کی ہیں, کس مقدار میں کی ہیں, کتنی ضرورت تھی, ضرورت اور مقدار کے حساب سے جو اس نے رکھا ہے, اور پھر اس کی صفت ربوبیت کی جو ہمہ گیری ہے کہ وہ جو ہے مالے, وہ پالنے والا ہے اور چیزوں کا خیال رکھنے والا ہے اور چیزوں کا سسٹینر ہے, پرووائڈر ہے وہ, جو ہر چیز کو جو ہے میسر کر رہا ہے جہاں جہاں پہ انسانوں کو ہی نہیں بلکہ دوسرے جو جانور چرند پرند حیوانات ہیں ان کو بھی دے رہا ہے. تو اس کی صفت رحمت کا جو ظہور ہے وہ قدم قدم پر انسان کو احساس دلاتا ہے, اس کا آستانہ چھوڑ کے تم کدھر جا رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے, جو ہے وہ حضرت دو علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ کہی ہے, یعنی جو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کے شکر گزار ہونا چاہیے, اور شکر گزاری کا یہ ادنا سے تقاضا ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے اللہ تعالیٰ کی. یہ ساری کی ساری نعمتیں جو میں ہر لحظہ استعمال کروں, میں ابھی اس وقت میں بول رہا ہوں تو یہ جو قوت نطق اور گویائی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ہے, اور اس کے پیچھے جو ساری قوتیں کا فرما ہے ذہن کے اندر اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں اور پروسیس ہو رہی ہیں اور زبان سے آواز نکل رہی ہے, حلق سے آواز نکل رہی ہے اور کس طریقے کی آواز نکل رہی ہے اور جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے اس طریقے کی جو آواز نکلتی ہے, تو یہ ساری کی ساری, یعنی یہ تو ایک مثال ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی جو ہے 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر جتنی نعمت استعمال کرو یہ ساری اسی کی دی ہوئی ہے. تو پھر انہی کا تقاضا ہے کہ میں اس کی دی ہوئی نعمتوں کا جو ہے وہ کفران نہ کروں, نہ شکری نہ کروں, اس کی نافرمانی نہ کروں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں اور اس کی شان میں کوئی گستاخی نہ کروں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر تم دیکھو تو تم نے کون سی ایسی بات ہے جس کا ارتکاب ان میں سے نہیں کیا, کہ اس کی ناشکری کرتے ہو, اس کا کفران کرتے ہو, اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتے ہو. تو یہ جو ہے سارے کا سارا اس کی صفات و اس کی ذات اور صفات میں نہ جانے تم لوگوں نے کس کس کو شریک ٹھہرا رکھا ہے, قدم قدم پر نافرمانی کرتے ہو. زمین کو تم نے فساد سے بھر دیا ہے, اور اب بھی اگر تمہیں کچھ اس کا احساس ہو جائے تو پھر تم پلٹ آؤ, استغفار کرو اللہ سے, جو تم نے اب تک کیا ہے اس پہ توبہ کرو اللہ سے, اور اب تک جو نافرمانی کیے ہیں اور جو غلط تصورات تم نے اس کے متعلق بنا رکھے ہیں ان سب سے اگر تم ہاتھ اٹھا لو, اس کی طرف پلٹ آؤ اور جو ہے اس کے سامنے سپر ڈال دو اور عہد کرو کہ آئندہ اسے جو ہے وہ انحراف نہیں کرو گے, اسی کے بن کے رہو گے اور ہر وہ کام کرو گے جس کا اس نے حکم دیا ہے, اور اس کام سے رک جاؤ گے جس کا اس نے رکنے کا جو حکم دیا ہے اللہ کے رسول کی جو ہے واسطے سے, جو ہے جو ہمیں پتہ معلوم ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. تو تمام غلط باتوں کو چھوڑ دینا, ان پہ ندامت کرنا, ان کی طرف نہ جانا, واپس دوبارہ پلٹ کے, یہی استغفار ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب قریب ہے, یعنی دعاؤں کا اور التجاؤں کا قبول کرنے والا ہے, یعنی اس کو پانے کے لیے کافی ہے کہ تم اخلاق کے ساتھ اس کی طرف توجہ ہو جاؤ, اور یہ تمہارے شفا اور شرکا کی مطلق ضرورت نہیں ہے جن کو تم اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے لازم ٹھہراتے ہو کہ ہم درمیان میں واسطہ لے کے آتے ہیں اور وہ واسطے سے ہم جو ان تک پہنچتے ہیں. اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ میرا رب ان ربی قریب, میرا رب تو بہت قریب ہے, وہ جو ہے وہ اس کو کسی واسطوں کی, دوسروں کی واسطوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جزیرۃ العرب کے اندر یہ صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا علاقہ ہے, اور یہ علاقے کے اندر یہ جنوب مغربی علاقہ ہے, اس کے اندر جو ہے یہ آباد ہو گئے تھے شمال سے نکل کے جو ہے ادھر آ گئے تھے. آگے فرمایا کالو, انہوں نے کہا, کالو جمع کسی کو, انہوں نے کہا یا صالح, یا اے صالح, قد کنتا, قد یقینی طور پر, کنتا تو تھا, فی نا ہمارے درمیان میں, فی نا ہمارے درمیان میں تو رہا ہے, تھا ہمارے درمیان میں, مرجوون, مرجوون جو ہے یہ دیکھیں جو لفظ ہے یہ ایسے بظاہر لگ رہا ہے یہ بھی ظاہر مشکل سا لفظ ہے, ظاہر اس کی یہ ترکیب, یہ شکل, یہ حیات ہمارے استعمال نہیں ہوتی, لیکن یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے لفظ رجا, امید, رجا, رجائیت پسند جو ہوتا ہے وہ امید, پازیٹیو جو آپٹیمسٹ جو ہوتا ہے, تو رجا سے ہے یہ لفظ بھی, رجا سے نکلا ہوا ہے امید. قبل حاضہ وہ مرجو جو ہے وہ شخص جو امیدیں, جس سے امید لگائی گئی ہو, جس سے امیدیں باندھی گئی ہوں, وابستہ کی گئی ہوں. تو اس کا مادہ آپ دیکھ لیں را جیم واو ہے, رجا, جرجو, رجا ان و رجو ون, उम्मीद करना या उम्मीदवार रहना, ये इसका जो है वर्ब है। अब इस वर्ब से जो मरजू है वो मफूल है, वो जिससे उम्मीदें वाबस्ता कर ली गई है, और जुवन वो जिससे उम्मीदें वाबस्ता, यानी तू तो हमारे दरमियान में रहा है इस हैसियत से, मरजुवन है यानी हालत उसकी बता रही है, यानी जो जो है उनकी हालत, इस हालत में होते हुए कि तू तुझसे उम्मीदें वाबस्ता थी कबल हाजा से पहले, यानी तू वो था जिससे बड़ी हमने उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी। असल में मरजुवन जो था ये मरजुवन है, जो है दोनों वाव इकट्ठे हो गए हैं जो है, तो फिर दोनों वाव को जो है इदगाम उनका जो है वो कर दिया गया है। फिर आगे फरमाया अतनहाना, 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 ये देखें कि ये भी आप जैसे अल्फाज इकट्ठे लिखे हुए नजर आते हैं तो थोड़े से मुश्किल नजर आते हैं। आ हल्फे इस्तफहामिया है क्या, आगे है तनहा, तनहा, ठीक है। ये नहा जनहा जो होता है जिससे पहले नहीं होता है, नहा मना करना, ये वो वाला है। क्या तुम मना करते हो, तनहा तुम मना करते हो, ना हमको, क्या तुम मना करते हो हमको, अन के ना बुदो, ना ना जबर ना फर्स्ट पर्सन प्लूरल वाला है कि हम इबादत करें, क्या तुम मना करते हो कि हम उससे कि हम इबादत करें, माँ उसकी, या बुदू जिसकी इबादत करते हैं, आबाओ ना हमारे जिसकी इबादत करते थे हमारे अबाओ अजदाद, उससे तू भी मना करता है। वह इन्ना ना, अच्छा ये देखो इन्ना है और बेशक हम, ना आगे जो इसको यकीनन के बारे में इन्ना यकीनन, ना हम यकीनन, हम लफी आगे फिर जो है वो फिर मजीद हरफे लामे लामे ताकीद है, हरफे ताकीद है, लफी यकीनी तौर पर हम पी शक के अंदर है, यकीनी तौर पर हम शक में मुबतला है इस बात के बारे में, इस तरीके कार के बारे में। मिम मा, मेन माँ है ये लफ्ज, मेन और माँ है, तद ऊनना ओ मेन उससे, माँ मेन मतलब से और माँ उससे, से उससे जो, तद ऊनना तादबरता तुम, दा आगे है ना, तुम दावत देते हो जिसकी इलैहे जिसकी तरफ, यही बोला दावत देते हो उसकी तरफ से हम जो है वो शक में मुबतला है, मुरीब, ये तो जो जिसकी तरफ तुम दावत देते हो ये मुरीब है, हमें बेचैन करने वाला है, हमें शक में डालने वाला है। अच्छा ये रैबुन से है, ला रैबफी जो है रैबुन शक वाला होता है, लेकिन मुरीब वो है कि वो शक जो इंसान को किसी जो है खजल में और किसी बेचैनी में जो है मुबतला कर दे, वो तरद्दुद में डाल दे इंसान को। अराबा यूरीबो इराबतन बाबे फाल है फोर्थ फॉर्म, रैबुन जो है फर्स्ट फॉर्म है और इराबा जो है वो फोर्थ फॉर्म है, तरद्दुद में डालना, रैब तो सीधा सीधा, राब तो जो हो गया वो हो गया शक में डालना। अब अराबा जो है ऐसा शक जिसमें बेचैनी हो, तो हम जो है बेचैन है, हम तरद्दुद में है जो है, और मुरीब फिर तरद्दुद वाला शक में डालने वाला। पाला तो उसने कहा, यानी किसने कहा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने, या कौम ए मेरी कौम, आ रही तुम, क्या तुमने देखा, ये आ है अलग और फिर है राई तुम, रा जरा रायत रोयतन देखना, क्या तुम देखते हो, क्या तुमने गौर किया, देखना जो है ये गौर करने के मानों में भी आता है। इन कुंता, इन अगर, कुंतु मैं हूं अगर, अला बजनतिन, और ये वही बात है जो हूद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाई थी, अगर मैं हूं खुली निशानी पर, खुली शहादत पर, मेरे रब्बी मेरे रब की तरफ से, वह आतानी व आता, और उसने दिया है मुझको, और उसने मुझको दिया हो, मिन हो उससे, रहमतन अपनी रहमत से उसने मुझको दी हो एक रहमत, फमई यंसुरुनी, फमन तो पास कौन, जनसुरो वो मेरी मदद करेगा, नी मेरी, तो उनमें से कौन है जो मेरी मदद करेगा फिर, मिन अल्लाह है अल्लाह से, इन असई तो, इन असई तो हू है दो, मिन अल्लाह अल्लाह से कौन मेरी, मेरी अकल की पकड़ से कौन मेरी मदद करेगा, इन असह तो अगर मैं असा जीनी नाफरमानी को, असा असा यासी असी अस, जो है वो नाफरमानी के मानो क्या इसी आनंद, अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं, इसी आन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, तो कौन मेरी मदद करेगा, फमा और पस नहीं, तजीदूननी, तजीदूननी का पहला जो है वो सेकंड पर्सन वाला है, आगे है ज्यादा यजीदो, बढ़ाना, ज्यादा करना, इजाफा करना, और नहीं तुम इजाफा कर सकते नी मेरे लिए गैर तकसीर। अब ये देखें, ये लफ्ज भी ये हमारे इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, तकसीर, ये तस्खीर नहीं है, तकसीर है, लेकिन इसको थोड़ा सा गौर से देखें लफ्ज को, तो ये तो जो है फरमेन का भी हो सकता है, और ता जो है इन दो ता हो सकते हैं, आप देखें कि ता या तो फेमिनिन को होगा या फिर सेकंड प्लूरल को होगा। आगे है फसीर, खसरा से, नुकसान से, खसारा नुकसान से, इसका मादा वही है, खसरा जो खसरो तकसीरन बावे तफील है, नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। अब इससे जो इसका जो तकसीर देखें, तकसीर जो है पूरे इनमें से ये कोई भी दोनों में से नहीं है, यानी तकसीर पूरे का पूरा जो है ये नाउन है या वर्बल नाउन है, जिसे हम मस्दर कहते हैं, तो वही मस्दर इस्तेमाल हुआ है, खसरा जो खसरो तकसीरन का नुकसान, यानी खसरा नुकसान पहुंचाना और तकसीर नुकसान हो गया, तो सिवाय नुकसान के तुम मेरे लिए किसी चीज का इजाफा नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा, ऐ साले अलैहिस्सलाम, इससे पहले तू हमारे दरमियान ऐसा शख्स था जिससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। क्या तू हमें उन माबूदों की परस्तिश से रोकना चाहता है जिसकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे? तो जिस तरीके की तरह हमें बुला रहा है उसके बारे में हमको सख्त शुबा है जिसने हमें खलजान में डाल रखा है। साले अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ बरादरान कौम, तुमने कुछ इस बात पर भी गौर किया कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक साफ शहादत रखता था और फिर उसने अपनी रहमत से भी मुझको नवाज दिया, तो इसके बाद अल्लाह की पकड़ से मुझको कौन बचाएगा अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं? तुम मेरे किस काम आ सकते हो सिवाय इसके कि मुझे और ज्यादा खसारे में डाल दो?
अब ये जो है हजरत सालेह अलैहि सलाम ने जो कौम को दावत दी थी, तो उस दावत पर कौम का जो है तबसरा है, और उसका खुलासा ये है कि ये जो तबसरा है उनका, ये उनकी मादा परस्ताना जहनीयत के काशी का, जैसे मैंने कहा है कि दुनियावी तरक्की, टेक्नोलॉजी में उबूर, अच्छी मईशत, अच्छी जीडीपी, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो इंसान में जो है, ये सारी की सारी मादा परस्ताना जहनीयत को जो है फरोग देती है, ये कैपिटलिज्म को जो है, और बिल्कुल उन्होंने भी, उनकी भी वही है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो साले, कि हमें तो तुम पर बड़ी जो है तवक्कुआत थी, तुम्हारी जिस कदर तुम जो है जकी थे और जो है अकलमंद थे, और तुम्हारी हुशमंदी थी और फरासत थी, और तुम्हारा हुस्न तदबीर था, जिस तरीके से तो ये मुकाम कर सकते थे, तुम्हारी सलाहियतें जिसके अंदर बड़ी बासलाहियत शख्स थे तुम, और तुम्हारी शख्सियत, पुरवकार शख्सियत को देखे तो हमने बड़ी तुमसे उम्मीदें लगा ली कि तुम बड़ी बड़े आदमी बनोगे और दुनिया में खूब नाम कमाओगे, और फिर हमारा नाम भी रोशन करोगे, और जाहिर है हम भी इससे जो है फायदा उठाएंगे तुमसे, लेकिन ये तुमने तौहीद का और आखिरत का ये जो नया राग छेड़ दिया है, इससे तो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। तो देखिए कि हजरत साले अलैहिस्सलाम का और आपकी कौम का जो मुआमला है और जो मकालमा है, ये जो हो रहा है, देखिए बैक एंड फोर्थ मकालमा, आपने दावत दी, कौम ने फिर जो है उसको, कौम ने वो जवाब, मतलब उस पर जवाब दिया, तो तबसरा किया, तो इसकी आप मुशाबहत देख लें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन मक्का की सूरत हाल बिल्कुल इससे कंपेयर कर लें आप। उन्होंने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कमोबेश यही कहा था कि मुशरिकीन मक्का नबूवत से पहले आपकी बड़ी बेहतरीन काबिलियतों के मुतरफ थे सारे, कि आप किस तरीके से मामला फहम है, आप किस तरीके से जो है वो शरीफ हैं, इन सलाहियतों के मालिक हैं, आप किस तरीके से इंसाफ के अलमबरदार हैं, ये सारी चीजें जो है वो जानते थे, इनकी रिकग्निशन भी थी, रिकग्निशन के मजायर भी हैं, और जो है उसके शवाहद भी जो है हमें बिल्कुल मिलते हैं और मौजूद हैं। तो अपने नजदीक ये समझते थे कि एक शख्स, ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये है, ये एक दिन बहुत बड़ा ताजिर बनेगा, और उसकी जो बेदार मगजी है, इससे जो है हमारी तिजारत को, जो हमारा मेन स्टे है, जिसकी वजह से हमारी मईशत जो है वो चल रही है, तो इससे बड़ा फायदा पहुंचेगा। जाहिर है जब ये बड़े बड़े काफले लेके जाएगा और ताजिर बनेगा, तो इससे फिर जो है पूरी मक्का की मईशत को फायदा होगा। तो ये जो है वो उनके, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद और आखरत और मकारम अखलाक की दावत दी, तो تو پھر آپ سے نہ صرف مایوس ہو گئے بلکہ بیزار ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا خاصا تو جو ہے وہ کام کا آدمی تھا، اب جو ہے وہ تجھے تو کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے اور اپنی زندگی ایسے ہی برباد کر رہے ہو اور ہماری امیدیں بھی تم نے جو ہے خاک میں ملا دی ہیں. تو دیکھیں کہ یہ جو یعنی صالح علیہ السلام کی دعوت ہے اور قوم کا جواب ہے، اور پھر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قومیں جو ہے مشرقین مشرقین مکہ کی مشابہ دیکھ لیں، تو اس سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو چیزیں یہ اسلام اور جاہلیت کے طرز استدلال کے نمائندے ہیں یہ دونوں، اور فرق اور اسلام اور جاہلیت کے فرق کو بھی ظاہر کرتے ہیں. ظاہر مشرق قوم کا جواب کہ ہمارے یہ معبود بھی مستحق عبادت ہے، ان کی عبادت ترک نہیں کی جا سکتی، وہ یہ کہتے تھے کہ اب تمہیں کہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے جو ہے جو ہمارے معبود ہیں ان سے ہم جو ہے وہ زمانے سے ان کی عبادت ہوتی چلی آ رہی، اب ہم ان کو چھوڑ دیں. تو اس زمانے میں بھی اور بعد میں ان کے کئی 2-2.5 ہزار سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آئے اور ان کو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم جو ہے آباؤ اجداد کی باتیں چھوڑ دیں. تو دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جاہلیت کا مزاج جو ہے، چاہے کہ جاہلیت جدید ہو یا جاہلیت قدیم ہو، اس کا مزاج ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے. توحید، دعوت توحید جو ہے اپنی جو اس کی جو دل نشینی ہے، اپنی جو اس کی خوبصورتی ہے، اس کے اندر جو بڑے پاورفل ایویڈنس اور براہین اور اس کے جو آپ کہہ لیں کہ دلیلیں موجود ہیں، تو یقینی طور پر انسان کو متاثر کرتی ہیں. لیکن جب انسان جاہلیت کے اندر، تعصب کے اندر اور تکبر کی وجہ سے اس کی مخالفت پہ آمادہ ہو جائے تو انسان ایک ذہنی خلجان میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک طرف ایک چیز جو انسان کو اپیل کر رہی ہوتی ہے، دوسری طرف دوسرے لوگ ہیں اور قوم ہے اور جو ہے ناک ہے اور عصبیت ہے اور قوم کا ساتھ ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ذہنی خلجان ہے یہ بھی جو پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی یہ ذہنی خلجان جو ہے تھا. ایک طرف تو اب ظاہر اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے تھے ان حقائق کو جو وہ پیش کرتے تھے، لیکن دوسری طرف مانتے بھی نہیں تھے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس سچائی کے بارے میں، اس دعوت کے بارے میں ذہنی خلجان کے شکار ہیں. تو صالح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ پھر ان کا جواب بھی ہے کہ آپ انہوں نے شبہ کا اظہار کیا، فرمایا کہ میں جو دعویٰ دے رہا ہوں یہ میری فطرت کی آواز ہے اور وہی الہی کی تعلیم بھی مجھے براہ راست ملتی ہے اللہ سے، فرشتہ مجھ پہ کلام لے کر اترتا ہے اور میں فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور اس کے کلام کو خود سنتا ہوں اپنے کانوں سے، اور زندگی کے حقائق میرے سامنے اس طرح کھولے جاتے ہیں جیسے عام انسان چشمے سر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، میں ان چھپے حقائق کو ایسے دیکھتا ہوں. تمہاری اور میری مثال تو ایک ایسی ہے جیسے ایک اندھا شخص ہے اور ایک جو ہے بینا ہے، دیکھنے والا ہے. تو دیکھیں کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے، یہ روحانی جو زندگی ہے یا مانوی اور علمی لحاظ سے اور دعوتی زندگی کے اندر بھی یہ بڑے مسائل جو ہے بعض یہ پیش آتے رہتے ہیں کہ ایک شخص بڑے یقین کے ساتھ ایک سچائی پہ قائم ہوتا ہے اور دوسرا گروہ جو ہے اس سچائی کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے اور اس کو سامنے جو ہے جھکانا چاہتا ہے. تو ایسی کشمکش کی جو تاریخ ہے مختلف ادوار میں مختلف جو ہے نتائج بھی پیدا کر چکی ہے، اور چند ایک تو بڑے مشہور ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ سقراط کا معاملہ، اس کو اس نے کہا کہ جب اس پہ چارج شیٹ جو لگائی گئی تھی کہ یہ لوگوں کو ہمارے معبودوں سے برگشتہ کرتا ہے اور یہ جو حقیقتوں کے نام سے اور جو چیزیں بتاتا ہے تو یہ چیزیں ہمارے جو ہے وہ کلچر اور ہمارا جو آبا و اجداد کا نظام ہے اس سے کمپیٹیبل نہیں ہے یہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو یہ یا یہ کام چھوڑ دو یا پھر جو ہے تم یہ زہر کا پیالہ پی لو. تو پھر اس نے جو ہے وہ زہر کا پیالہ پی لیا. اور دوسری مثال آپ دیکھیں کہ ایک اور مطلب ریسنٹ ہسٹری تو نہیں ہے لیکن بہت بعد کی ہے، 16ویں صدی 17ویں صدی کی، گلیلیو کی. جب گلیلیو نے یہ سامنے یہ پیش کیا، یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین جو ہے وہ گردش کرتی ہے، تو یہ جو تورات اور جو اس وقت جو کلرگی تھی، جو کرسچن کلرگی اور پوپ تھا، ان کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا کیونکہ تورات کے مطابق زمین تو مرکز تھی کائنات. تو ظاہر ہے یہ ان کے جو اس سے ٹکراتا تھا، تو انہوں نے اس کو پکڑ کے عدالت کے اندر جو مذہبی عدالت تھی اس کے اندر تو وہ کے سامنے جو ہے اسے جو ہے پیش کیا، اسے کہا، اسے آپشن دی کہ یا تو تم اپنا یہ جو مقالہ جو تم نے لکھا ہے اس کو ودرا کر لو، اس کو واپس کر لو، اسے تائب ہو جاؤ، یا پھر تم جو ہے وہ موت کو قبول کر لو. तो ताहरे लोगों ने, उसके साथ लोग थे, और उसने कहा कि मैं अपना ठीक है, मैं अपना, बड़ा हेजिटेंटली उसने कहा कि मैं अपना मकाला जो है वापस लेता हूँ, ये वाला। लेकिन जो ही वो अदालत से बाहर निकला तो वो फिर वापस भाग के आ गया, जो है वो अदालत, जो उसके पास, जज के पास, जो उसका क्लर्गी थी, जो उनकी पोप था, जो उनके पास आ गया। तो उसने कहा कि, जो आजकल की जबान मुस्तार ली जाए, तो उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, मैं तो फिर बाहर निकल के, मैंने, मुझे तो फिर वही जमीन जो है, मुझे अभी मैं देखता हूँ कि जमीन घूमती हुई, मैं किस तरीके से इस हकीकत का इनकार कर दूं। तो उसने कहा कि मैं जहर का प्याला पीता हूँ, और उसने जहर का प्याला पी लिया। उसने जो है वो अपनी मौत को जो है, जाहिर उसको वो कर दिया गया, उसको मतलब डेथ सेंटेंस उसकी जो है वो कर दी गई, उसको मार दिया गया, वो मर गया अपने, उसने कबूल कर ली मौत को, गले लगा लिया उसने। लेकिन वो जो हकीकत थी जिसको वो देख चुका था, अब वो उससे फिरना उसके लिए जो है मुमकिन नहीं था। अब देखें कि ये तो वो लोग होते हैं जो साइंस के लोग होते हैं, और जिनके मतलब वो जो चीज एक साइंसी मुशाहदे में एक चीज उनके सामने आई है, और उसके ऊपर जो है वो डट के खड़ा हो गया, और मौत को तरजीह दे दी उसने जो है उन चीजों के ऊपर, हकीकत को तरजीह दी है मौत के, जो है मौत को गले लगा लिया। तो एक जो वो शख्स जिसने इस कायनात की हकीकतों को, छुपी हकीकतों को पा लिया हो, और अल्लाह उस पर वही भेजता हो, और अल्लाह उससे कलाम होता हो, और अल्लाह के यानी रसूल की बात है, तो वो देखें कि वो कैसे नहीं खड़ा होगा इन चीजों के सामने, और कैसे नहीं जो है वो इन सब चीजों को इनकार करेगा, इन सब चीजों का, और वो उसके ऊपर जो है इस्तेकामत से, और जो है वो खड़ा हो जाएगा। और वो बिल्कुल ऐसी ही जो है वो मिसाल भी थी। हजरत साले ने भी अपनी कौम से कहा कि मैं जानते बूझते हुए भी, हकीकत के दरमियान में हकीकत को देखते हुए, हकुल यकीन और ऐनुल यकीन की जो है वो स्टेजेस हैं उनको होते हुए भी, मैं अगर इस सदाकत का इनकार करूं जिसकी तरफ मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं, तो फिर अल्लाह की गिरफ्त से मुझे कौन बचाएगा। तो वो कभी भी, आप देखेंगे कभी किसी पैगंबर ने, किसी रसूल ने, किसी नबी ने जो है वो सर नहीं झुकाया अपना, इस वजह से कि उसको जो अपनी जान का खतरा था, या उसको जो है वो माल और नुकसान, अपने घर वालों की जान खतरा था, कहीं भी नहीं, इस वजह से कि ये लोग जो है अपनी हकीकत को अपनी आंखों से देख रहे होते, इनको इतना यकीन होता है चीजों के ऊपर। ये असल में यकीन की बात है, और ईकान की बात है, और कन्विक्शन की बात है, कि जो मैं दावत दे रहा हूं यही ऐन हक है। और मैं आके बताओ अगर कौन है तुम में से जो मुझे इस गिरफ्त से, अल्लाह की गिरफ्त से जो है वो बचाएगा, कोई नहीं बचा सकता। हाँ ये जरूर है कि तुम मेरी बर्बादी और हलाकत में इजाफे का बायस तो बन सकते हो, कि मैं तुम्हारी बात मान लूं तो मैं खुद हलाक हो जाऊं, लेकिन मैं जो है तुम में से कोई मुझे अल्लाह ताला की गिरफ्त से नहीं बचा, तुम्हारी वजह से मैं अल्लाह ताला की नाफरमानी का खतरा मोल नहीं ले सकता, और इससे बढ़कर की जिंदगी के लिए तबाही कोई और होगी नहीं कि मैं जो है इस रास्ते से फिर जाऊं। तो मैं, या कौम, ए मेरी कौम, हाज ही नाकतुल्लाह, हाज ही ना, ये वही अल्फाज हैं, हम इसको पढ़ चुके हैं, ये अल्लाह की ऊँटनी है, ऊँटनी वो नाका उस ऊँटनी को कहते हैं जो जुफ्ती के काबिल हो चुकी हो, जो यंग एडल्ट हो, जो बच्चे पैदा करने के काबिल हो चुकी हो, वो जो है उसके लिए नाका। वो कुरान में उनके लिए कोई 13 के करीब अल्फाज आए हैं, तो इनशाला इसको भी मैं जो फिर इनकार दूंगा, और वो जो कुरान में मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमने इससे पहले इनको कहीं पे जिक्र आया है। लकुम आया, तुम्हारे लिए एक आयत, एक निशानी है, फजरूहा, फा पस जरा, वजरा यजरो वजरन, छोड़ना, पस तुम छोड़ दो इसको, यानी इसको लीव इट, ताकुले फिर अर्दिल्ला, ताकुले ताकि ये खाए, फी अर्दिल्ला अल्लाह ताला की जमीन में। अब देखिए दो लफ्ज, अहम लफ्ज है, नाकतुल्ला अल्लाह की ऊँटनी, अर्द अल्लाह अल्लाह की जमीन, यानी अल्लाह की ऊँटनी है ये, अल्लाह की जमीन में खाती फिरे जो जो चाहे ये। वला तमस्सुहा, वही अल्फाज है, पहले हम इन अल्फाज को पढ़ाए हैं, बिल्कुल वही एक जैसी है। वला और ना तमस्सुहा, तुम छुओ हा उसको, ना तुम छुओ उस ऊँटनी को, बिसुएन बुराई से, यानी किसी बुरी नीयत से उसको मत छूना, मारने की नीयत से। फया खुजकुम, वरना फा वो है वाकिब वाला है, वरना तो पास नहीं तो, या खोजो वो पकड़ लेगा तुमको, यानी वो अल्लाह जो है तुमको पकड़ लेगा, अगर तुमने बुराई से छुआ उसको, मारा, तो अल्लाह ताला तुमको पकड़ लेगा। अजाब उन करीब, एक करीबी अजाब में, ऐसा नहीं है कि बाद में आने वाला अजाब, तो आखिरत में तो वो आएगा ही तुम पर, लेकिन एक करीबी अजा में तुमको जो है ना पकड़ लेगा। तो आकरूहा फा पस अकरूहा, उन्होंने मार डाला। असल में ये तर्जमे में आप देखेंगे तर्जमों के अंदर कि फकरूहा का मतलब होगा तर्जमा लेकर वो पस उन्होंने मार डाला उसको, उस ऊंटनी को। तो असल में अकारा जो होता है टांगे काट डालना, और टांगे भी जो है हर जगह से नहीं, किसी जगह से नहीं काट डालना, टांगे भी होती हैं एक खास कूंचे होती हैं, कूंचे काटना, हैमस्ट्रिंग जो जिसे कहते हैं ना हैमस्ट्रिंग, ये मसल होते हैं जो बिल्कुल जो पाँव के पट्ठे के साथ जो पीछे की तरफ एड़ी के साथ जो लगी हुई जगह होती है ये हैमस्ट्रिंग होती है। तो इसको अगर जो है अगर काट डाला जाए तो इंसान इमोबिलाइज, जो जानवर इमोबिलाइज हो जाता है। तो अरब क्या करते थे कि ऊंट को हलाल करने से पहले जो है उसकी कोंची काट डालते थे ताकि वो इमोबिलाइज हो जाए, भागे नहीं, और वो जो आप देखते हैं ईद के ऊपर जो जानवरों के साथ जो कुछ होता है वो वाला मामला ना हो, इन्हीं अनाड़ी लोग आते हैं और अच्छी तरह बंद नहीं करते, अब आधा जुबह की वो जानवर है और वो भागता फिर रहा है, तो वो ना हो, तो उसको फिर वो नहर करते थे बाद में। इसी वजह से नहर करने को भी अकरा कहते हैं, अकर कहते हैं। पकाला तो उसने कहा, मूल साले अलैहि सलाम ने, तमत्ताउ तो तमत्तो फायदा उठा लो तुम, की दारे कुम अपने घरों के अंदर, दार जो है घर के लिए भी, मंजिल के लिए, जगह के लिए, दुनिया के लिए, आखरत के लिए, सबके लिए इस्तेमाल होता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। आपको पता है दार दारैन, दारैन का मतलब होता है दोनों जहान, ये दुनिया और आखरत, तो वो भी दार घर के लिए भी इस्तेमाल होता था। ये दार का लफ्ज बड़ा इसकी वसी एप्लीकेशन है। सलासत अज्यामिन, 3 दिन अपने घरों में 3 दिन फायदा उठा लो, जालिका वादुन ये अल्लाह का वादा है, गैरु मकजूबिन जो झूठा ना होगा। ये भी इस तरह के लफ्ज है मकजूब, लेकिन ये देखें कि जैसे मफूल होता है ये कजबा का वही है, कजबा जो कजबन झूठ बोलना, कजब किजब फिर जो है झूठ को कहते हैं, मकजूब मफूल की वो है झूठा होने वाला, यानी वो जो झूठा हो गया, यानी झूठा शख्स जो है, गैरो मकजूबिन जो झूठा नहीं है, फिर गैर जो है वो अदर देन के लिए, अदर देन दबाया जो झूठा नहीं होगा, यानी ये अल्लाह ताला का वो वादा है जो झूठा नहीं होगा। इसका तर्जमा पढ़ेगा
हो रहा है मेरी कौम के लोगों, देखो ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, इसे खुदा की जमीन में चरने के लिए आजाद छोड़ दो, इससे जरा तारुज ना करो, ना करना, वरना कुछ ज्यादा देर ना गुजरेगी कि तुम पर खुदा का आजाब आ जाएगा। मगर उन्होंने ऊँटनी को मार डाला, उस पर साले अलैहि सलाम ने उनको खबरदार कर दिया कि बस अब 3 दिन अपने घर में और रह बस और रह लो बस, लो ये ऐसी मियाद है जो झूठी ना साबित होगी।
अब ये उन्होंने असल में कौम का मुंह मांगा मौजजा था। उन्होंने सूरह कुरान मजीद से हमें पता चलता है कई मकामात से कि कौम समूद ने उन्होंने कहा कि एक कोई निशानी, अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो एक निशानी पेश कर लो। और उन्होंने, इमाम राजी ने अपनी तफसीर में लिखा है कि उन्होंने ईद का दिन चूज किया इसके लिए, और बड़ी गैदरिंग थी, इजमाही इजमा था, कौम मुजतमे थी, तो उन्होंने वहां पर चैलेंज किया और कहा कि अगर वाकई तुम अल्लाह के रसूल हो तो ले आओ यहां से एक ऊंटनी को, एक ऐसी चीज है ये और ये, और अगर तुम ऐसे नहीं ला सकते तो फिर जो है तुम झूठे हो। तो जाहिर है अल्लाह ताला ये जो तहदी है और ये चैलेंज है और इस तरह की जहां भी बात है तो अल्लाह ताला अपने रसूलों को रसवा नहीं करता। तो आपने जो है दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह ताला से दुआ की, ये मांगते, जाहिर ये वो जगह मकाम ऐसा है कि अगर जब ये इस तरह का मौजा, इसी मौजा नमूदार हो जाए तो फिर उसके मानने के बाद फिर कौम का जो है वो उसकी बसात लपेट दी जाती है। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो बिल्कुल ये आखिरी मरहला था, तो अल्लाह इस मरहले पे जो है अल्लाह ताला ने हजरत साले अलैहि सलाम ने कहा कि ठीक है ये सामने चट्टान है, तुम इससे को देखो, वो चट्टान फटी और उससे ऊँटनी निकल आई सामने, तो उन्होंने इस ऊँटनी को पेश किया। अब कुरान मजीद ने इस नाका के बारे में, इस ऊँटनी के बारे में तफसीलात नहीं दी, और हम आपको याद होगा पीछे भी हम अर्ज कर चुके हैं कि ये बिल्कुल गैर गैर जरूरी है कि किस किस्म की, उसका कलर क्या था, उसकी हाइट क्या थी, वो क्या बाकी तफसीलात क्या थी, ये बिल्कुल गैर जरूरी है। हाँ जो अहम बात थी कि ये अल्लाह ताला की निशानी थी, अल्लाह ताला की अलामत थी, इसके बारे में कहा गया कि ये अल्लाह की ऊँटनी है तुम्हारे लिए, अल्लाह ताला ने इसको निशानी मुकर्रर कर दिया है, और ये बड़ी ही जाहिर ये मोजज़े से पैदा होने वाली एक मुमताज ऊँटनी थी। आपने कौम को बताया ये अल्लाह की ऊँटनी है और ये अल्लाह की जमीन में इसको छोड़ दो, ये जहां जहां से जब चाहे जो चाहे खाती फिर, इसे तर्ज ना करना, इसको कुछ कहना मत। और कुछ रिवायात में आता है, दूसरी रिवायात में, कि इसकी पानी की बारी भी मुकर्रर कर दी गई कि बस्ती के कुएं से एक दिन ये पानी पीती थी और दूसरे दिन जो जानवर पानी पीते थे, और ये जब पानी पीती थी तो पूरे कुएं का पानी ये पी जाती थी, और जाहिर है फिर जो चूंकि खसूसी थी इसी हिसाब से चारा भी खाती होगी। तो इस बात का बड़ा अंदेशा था कि ये कौम के बिगड़े हुए लोग बिलाखिर इसको मार डालेंगे। तो आपने पेशगी ये बता दिया, वार्निंग दे दी, इसको किसी बुराई की नीयत से हाथ मत लगाना वरना अल्लाह ताला का अजाब जो है तुम्हें पकड़ लेगा। तो क्या फिर कौम समूद जो है इस मौजदे के बाद ईमान ले आई? असल में जो लोग भी नजरी दलायल, इतने ज्यादा दलायल और अल्लाह ताला की आयात और ये जो है ये चीजें जो है मौजूद थी, उनको भी जो महसूस, जो उसकी दलायल की कुव्वत को और ये सारी चीजों को जो है वो महसूस ना कर सके, तो वो इसी दलायल से कब जो है वो कन्विंस होगा? ऐसा नहीं हुआ। चुनाचे मौजदे के बाद भी ऐसा ही हुआ, हजरत साले की कौम अपनी सरकशी से बाज ना आई, और इस सरकश मुनकर हक और मुतकबिर कौम ने वही किया जो इसकी जो है जो उसे मतलब सजावार था, जो उसके बिफिटिंग था, कि उन्होंने अल्लाह ताला की इस भेजी हुई निशानी और इस ऊंटनी को मार डाला, और फिर बड़े चैलेंज के अंदाज में सारे इस्लाम को कहा कि हमने तो इस ऊंटनी को जिसे तुम कहते थे कि अल्लाह की तरफ से है, हमने इसको मार डाला है, अब वो ले आओ तुम अजाब जिसका तुम हमें हमेशा डरावा जो देते थे। तो ये गोया हजरत साले की तकजीब का उस कौम का आखिरी जो है और हतमी ऐलान था कि बस हम कायनात के किसी खुदा को नहीं मानते, और जिस खुदा का तुम डरावा देते रहते हो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये था। तो इस पे अल्लाह ताला के जाहिर गजब भड़का, अल्लाह ताला का वादा था, और फरमाया कि ये वादा झूठा ना होगा। तो साले इस्लाम को हुक्म दिया कि इनको बता दो कि 3 दिन अब तुम्हारी मोहलत है, और 3 दिन के बाद तुम तबाह कर दिए हो जाओगे। और 3 दिन के बाद ऐसे ही हुआ, इसको हमको हलाक कर डाला गया। अब इस जान लेना चाहिए इस मकाम पे कि ये कौम समूद पर यह अजाब क्यों आया? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की इंतहा कर दी, और उसके मुकाबले मुकाबले में डट कर जो है सरकशी की, और किसी तरह भी रसूल पर हजरत साले अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने को तैयार नहीं थी। तो फिर अल्लाह ताला का जो कानून है, कानून कौम हिलाकत जो है वो जो है इनहेलेशन ऑफ नेशंस, उसका कानून जो है वो हरकत में आया और कौम को जो है अजाब दे दिया। अगर मैं फरमाया वलम्मा जा अमरोना, ये अमरोना, ये फिर जब आ गया हमारा हुक्म, तीसरी मरतबा ये आ रहा है कि जब आ गया हमारा हुक्म, हमारे हुक्म से मुराद हमारा अमर, हमारा अजाब, फैसला आ गया। नजैना सालेहन, बिल्कुल वही अल्फाज है, नजैना नूहन, नजैना हूदन, नजैना सालेहन, हमने साले को बचा लिया। वल्लज़ीना आमनू माहु, वहां भी यही था तीनों के साथ, कला उनके साथ उनको भी बचा लिया जो ईमान लाए थे। बिरहमतिन मिन्ना, अपनी रहमत खास से बचाया, हमें खास तरीके से बचाया। वो मिन खिजिए यौम इज़िन, तो जो है यौम इज़िन है, अब देखें ये लफ्ज जो है यौम इज़िन मीम की जेर है, लेकिन दो रिवायात, दो जो है ऐसी हैं जो जो किरातें जिनके अंदर मीम के ऊपर जबर भी पड़ी गई है। तो ये जान लेना चाहिए कि अगर कहीं पे किसी तिलावत के अंदर मीम के ऊपर जबर पड़ी जाए तो वो भी ऐसा गलत नहीं है। मिन खिजिए, और वो जो रसवाई है यौम यौम इज़िन, उस दिन की रसवाई से भी महफूज रखा, ये नहीं है उनको। इन रब्बा का, बेशक तुम्हारा रब होवा वो यो है, तुम्हारा रब तो वो है जो अल कवीजुल अजीज, कवी है और अजीज है। वो अखद अल्लजीना, वो अखद और पकड़ लिया अल्लजीना उन लोगों को, जलमू जिन्होंने जुलम किया, सहया सहया ने पकड़, एक चिंगार ने पकड़ लिया। असबहू, और ये जो चिंगार, ये जो सहया, खौफनाक चीख, खौफनाक चिंगार, बहुत सख्त किस्म की डांट आवाज जो है इसको सा, तो असबहू पस तो वो हो गए, असबहा युसबहू इसबाहन, एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाना, बदल जाना, ये असबाहा है। इसी से सुबह है, सुबह इसलिए उसको कहते हैं कि रात के अंधेरे से उस सुबह की रोशनी में जो आ जाते हैं तो वो जो सुबह फिर कहलाता है। ये दियार है, दियार जो है वो दार की जमा है, अपने घरों के अंदर वो हो गए यासमीन, ऊंधे मुंह करने वाले। और इसको भी हम लफ्ज को पहले वहीं पे पढ़ाए हैं, जो है मुंह के बल लेटना, जासिम मुंह के बल लेटने वाला। का अल्लम जागनो फीहा, का अन जैसे के लम वो नहीं रहे, जगनो उस रहे, लम जगनो नहीं रहे फिया उसके अंदर, उन घरों में जैसे कभी वो रहे ही नहीं। अला खबरदार रहो, सुन लो, हरफे तंबीह है, इन समूद कफरू, बेशक समूद ने कुफर किया, रब्बहुम अपने रब से, अला खबरदार रहो, सुन लो, वो दल समूद तो दूर हो गए, फटकार है समूद पर, दफा कर दिए गए जो फटकार समूद जो है। हाँ
आखिरकार जब हमारे फैसले का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से सालिक अलैहि सलाम को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे बचा लिया और उस दिन की रसवाई से उनको महफूज रखा। बेशक तेरा रब ही दरअसल ताकतवर और बालादस्त है। रहे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया था तो एक सख्त धमाके ने उनको धर लिया और वो अपनी बस्तियों में इस तरह बेहिस्सो हरकत पड़े के पड़े रह गए कि गोया वो वहां कभी बसे ही ना थे। सुनो, समूद ने अपने रब से कुफ्र किया, कभी बसे ही ना थे। सुनो, समूद ने अपने रब से कुफ्र किया, सुनो, दूर फेंक दिए गए समूद।
आपको कौम समूद का अंजाम आखिर में बताया गया कि 3 दिन की मोहलत जो है वो मुद्दत गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें अजाब में पकड़ लिया, और अजाब से पहले अल्लाह ताला ने तरह साले अलैहिस्सलाम और ईमान वालों को बचा लिया। अब उन्हें अल्लाह ताला ने कैसे बचाया, अब उसके अजाब की जो हौलनाकी थी उसको तो देखते हुए लगता है कि किसी आदमी का बचना मुमकिन नहीं था। तो जाहिर है ये अल्लाह ताला ने लेकिन अपनी कुदरत खास से उस इलाके से हिजरत करवाई उनको, और आगे करवाई होगी, और जो है अल्लाह ताला ने उस दिन की रुसवाई से भी महफूज रखा। अब इस रुसवाई की क्या नोयत थी ये भी अल्लाह ताला जो है खुद ही जानता है। ये सब अल्लाह ताला के जो इसरार है जो उसके अलावा कोई नहीं जानता। हजरत सारे अलैहिस्सलाम और पर ईमान वालों को कहाँ पनाह दी गई ये भी अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन रिवायात से मालूम होता है कि जजीरा नुमा सीना में, और उनकी मकामी रिवायात भी है कि जब समूद पर अजाब आया तो हजरत सारे अलैहिस्सलाम हिजरत करके वहां से चले गए, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ इतकाफ किया करते थे और आपको जहाँ पे तौरात दी गई थी जिस पहाड़ के करीब यानी कोहेतूर के करीब जो है एक और पहाड़ी का नाम नबी साले है, और कहा जाता है कि यही आज भी उस पहाड़ी का नाम यही है, और मकामी रिवायात में यानी हजारों साल से उस पहाड़ी का नाम यही बताया जा रहा है, और बताया जाता है कि यही मकाम जो है आपकी जाए कयाम था जब आप इस कौम पे अजाब आया तो, और यहाँ पे आप सल्लम के साथियों को तसली भी दी गई है कि कुव्वत और इज्जत का असल मालिक तो जो है तेरा रब ही है, अगर इसमें से किसी को कोई हिस्सा नसीब होता है तो ये उसी की अनायत से होता है। आप लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को फरमाया गया कि मुतमइन रहो, जिस तरह साले के दुश्मनों को अल्लाह ताला ने जलील किया और पामाल किया और खत्म कर दिया, इसी तरह तुम्हारे दुश्मनों को भी अल्लाह ताला जो है रसवा करेगा, और अल्लाह ताला का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। इस अजाब की नोयत क्या थी, अब ये समूद पर अजाब जो है सिर्फ एक शक्ल में नहीं आया बल्कि कई तरह के अजाब बजक वाकता है, और इन अजाब के लिए कुरान मजीद में मुख्तलिफ ताबीरें आई हैं, और अल्लाह ताला ने यानी उन पर मजमूरी तौर पर देखें तो सरमा की एक बड़ी शदीद हवा, कड़क यानी बड़ी शदीद कड़क जिसने जो है वो उनको हला कर डाला, ओले और जलजले का अजाब जो उन पर भेजा, और इस आफत को यहाँ पे इन आयात के अंदर रजफा कहा गया, यानी ये कितना इजतराब खेज जो हिला मार देने वाली आवाज जो थी अर्थ को जो था रजफा वो जो है वो आया उन पर। दूसरे मकाम पर सायका इसको कहा गया, यानी बिजली का एक बड़ा जबरदस्त कड़ाका था, एक थंडर बोल्ट था, और तीसरे मकाम पर इसको ताहिया ये ओवर पावरिंग ब्लास्ट जो है कहा गया। इन तीनों में जाहिर कोई ऐसी कंट्रडिक्शन नहीं है, तीनों असबाब की बाजगश्त एक ही चीज की तरफ है, तीनों बशक वक्त जो है इसको मुमकिन है, और उलमा का यही ख्याल है कि तीनों बशक वक्त जो है इन लोगों के ऊपर आए। बाज़ एलिम की राय है कि बादे तुंदो तूफान 12 के साथ साथ जो है यानी उन पे जलजला भी आया और बड़ी खौफनाक आवाजें थी उसके अंदर, और बाज़ रिवायत के मुताबिक ये आवाज जो थी ये फरिश्ते की आवाज चिंघाड़ थी, और ये इसके अंदर मुहिब और इसके अंदर खौफनाक थी, उसके जो शदीद असरात थे यानी उससे जो शॉक वेव्स थी उससे कौम समूद के लोग जो है उनके जिगर फट गए, और वो औंधे मुंह अपने घरों के अंदर जो है वो गिर गए, और उसी आवाज के इर्तियाज से यकीनन जमीन फटी और जलजला आया, और जिससे उनकी सारी बस्तियां जो है तबाह हो गई, और एक सरकश कौम को अल्लाह ताला ने इबरत का निशान बना के रख दिया आने वाली नस्लों के लिए, और लानत और मलामत के साथ छुटलाने वाली एक कौम जो है सफ़ा कौम का सफ़ा जो है तकदीर अकवाम की किताब से जो है वो पलट दिया गया। یہی وجہ ہے یہ فرمایا گیا کہ ان کی بستیاں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بستیوں کے مکین جہاں کبھی رہے ہی نہیں تھے، بڑی بڑی اعلی شان ان کے پہاڑ کاٹ کے بنانے والی ان کی پارلیمنٹ، ان کے گھر، ان کے جو بیٹھکیں اور ان کے جو ہے بڑے اونچے اونچے مکان جو تھے، وہ سارے کے سارے آج بھی جو ہے اس قوم کی داستان، تباہی کی داستان جو بتا رہے ہیں. اور یہ ایک بڑی نہایت ہی مؤثر نظیر بیان کی گئی قرآن مجید کے اندر، اور بڑی زبردست تاثیر احساس ہے یہاں پہ، جس کے ساتھ زندگی اور موت کا منظر جو ہے یہاں پہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قوموں کے انجام سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار اور اس کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کی طرف جو ہے استغفار کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان والوں کو معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت خاص سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا.